आज हम अस्थमा या दमा जिसको उर्दू में कहते हैं उसके मुतालिक डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी आम बीमारी है आम तौर पे। मतलब हर एक तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं आपको फिगर बताऊं कि 2015 के सर्वे के मुताबिक ये ऑलमोस्ट 390 मिलियन पीपल्स को इफ़ेक्ट कर चुका है अस्थमा जो है।
अच्छा, तो यह खुद ही बीमारी है, इसके वजूद में आने की वजूहात के बारे में बताइए। यानी पहले खुद क्या चीज़ है, कौन सा हिस्सा इफेक्ट होता है, कौन सा हिस्सा मुतासर होता है, इसके बारे में बताइए।
ये जो दमा है बेसिकली ये जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर नालियां होती हैं जिनको सांस की नालियां या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये उनके अंदर सांस की नालियों में तंगी को दमा कहते हैं। तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स के अंदर या फेफड़ों के अंदर, उनके अंदर सोजिश हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम सांस लेने का एक नॉर्मल अमल है वो मुतासिर हो जाता है। मतलब जितनी ऑक्सीजन या हवा हमारे फेफड़ों को चाहिए होती है उतनी उसके अंदर रुकावट आ जाती है, क्योंकि जो सांस की नाली है वो तंग हो जाती है। तो इसके ये मतलब इसको हम दमा कहते हैं। और इसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, जैसे कि एक्यूट, या फिर जो अभी मसलन किसी को सांस की नाली में तंगी हुई है फ़ौरन से, तो उसको हम फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ मरीज़ होते हैं जिसके जिनको क्रोनिक अस्थमा या फिर बहुत देर तक जो है दमा रहता है, ये बीमारी रहती है बहुत सालों तक, तो उसको क्रोनिक अस्थमा कहते हैं।
अच्छा, ये वरासती मसला होता है या नहीं, कोई भी मुब्तला हो सकता है इसमें?
जो इसके कॉज हैं उसके अंदर दो तरह के इसके अवामिल हैं जो के दमे की बीमारी कॉज करते हैं, जो उसका मूजब बनते हैं। एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं मतलब, और दूसरे जो हैं वो जेनेटिक या मौरूसी इसके वजूहात हैं। तो अगर मैं इसकी जो मौरूसी वजूहात हैं उनकी बात करूं, तो तकरीबन 2005 के सर्वे तक तकरीबन 25 जीन्स हमारी जिस्म के अंदर जो हैं वो दमे को कॉज करने में या इसकी वजह बनने के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो दमा है ये एक मौरूसी बीमारी भी है कुछ हद तक। मतलब 25 या फिर 35% तक ये कुछ मौरूसी बीमारी भी हम इसको कह सकते
कह
हैं।
सकते हैं। अच्छा, इसमें इसके अलाइम के बारे में थोड़ा बताइए कि होता क्या है इसमें, कब से शुरू भी होती है ये, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
जो इसकी साइंस हैं या ये जो अलाइम है उनके अंदर जो खांसी आती है मरीज़ को इसके बाद, इसमें क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर जो नालियां हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन जाती है वो तंग हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो दमे का मरीज़ होगा उसके जब वो सांस लेगा, क्योंकि उसको पूरी जितनी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन तो उतनी ही अपने अंदर इनहेल करेगा या लेगा जितनी उसकी जिस्म को ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि आगे जहाँ से उन्होंने गुजरना है उस ऑक्सीजन ने वो रास्ता तंग हो चुका है, तो इसकी वजह से उस जब वो सांस लेगा जब ऑक्सीजन को अंदर या बाहर लेके जाएगा तो उसके अंदर से एक सीटी जैसी आवाज़ पैदा होती है। आपने भी शायद आपका इत्तफाक हुआ हो कुछ लोगों में जिनको ये दमे का मर्ज होता है,
जी
उनके
बिल्कुल।
अंदर एक जब वो सांस लेते हैं जब वो उठते बैठते हैं या खासकर सोते वक्त आप सुनेंगे कि एक सीटी जैसी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, जिसको वीजिंग कहते हैं, वीजिंग साउंड। ये एक
बिल्कुल।
बहुत ही जो अहम उसका साइंस साइन है अस्थमा का या दमे का। इसके अलावा जो उसको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, मतलब उसको सांस मुनासिब पूरा नहीं दिया जाता, रुक रुक के वो सांस लेता है, मतलब उसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है मरीज़ को। इसके अलावा डिफरेंट मतलब इसकी वजह से और भी अनासर हैं जो असरअंदाज होते हैं। मसलन जब सोजिश हो जाती है तो फिर और भी बैक्टीरियाज जो हैं वो आपके फेफड़ों पे अटैक कर देते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया एक इन्फ्लेमेशन या सोजिश इसकी एक बड़ी वजह है दमे को पैदा करने की मरीज़ के अंदर।
जी
तो कुछ इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर वो फेफड़ों में पैदा होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक खांसी तो होती है, अगर मरीज़ को मसलन बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं भी है तो फिर भी जो उसका थूक आएगा मरीज़ का वो ज़रा थोड़ा नॉर्मल, जैसे हम अगर कोई इंसान थूकते हैं तो वो उस तरह गाढ़ा नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये इसमें एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा होता है फेफड़ों के अंदर
जी
ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो स्पूटम या थूक होता है मरीज़ का उसमें इओसिनोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो थोड़ा आपको विस्किड या गाढ़ा हुआ होता है।
अच्छा, इस बीमारी में और भी कोई फैक्टर्स होते हैं? जैसे हमने शुरू में बताया पॉल्यूशन के हवाले से हम बता रहे थे, ये सारी चीज़ें भी मौसर साबित हो सकती हैं?
जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो मसलन जेनेटिक तो मैंने आपको बताया,
जी
जैसे वो ऑलमोस्ट 25% ही इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत या माहौलियाती जो अवामिल हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं उनको खाने से एलर्जी होती है, डिफरेंट इकसाम के एलर्जेंस मौजूद होते हैं,
जी
जैसे कुछ लोगों को पोलन्स जैसे होते हैं, फूल वगैरह होते हैं उनके अंदर पोलन्स होते हैं, वो बाग में जाएंगे उन्हें वहाँ छींक के आना स्टार्ट हो जाएंगी, ये तो एक नॉर्मल मैंने आपको मिसाल दी है, लेकिन इस इनकी वजह से अस्थमा भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को खाने की कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, मसलन कुछ को मूंगफली से एलर्जी होती है, चावल से एलर्जी होती है, मसलन वो अस्थमा के उन केस में ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं या कम खा सकते हैं। अब खैर जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि फूड एलर्जी को हम कुछ मेडिसन्स है जिसकी वजह से कवर कर सकते हैं, तो सब कुछ खा सकते हैं मरीज़। ये कुछ इसके अलावा जो माहौलियाती अवामिल हैं उसमें जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आप जहाँ पे अपनी जॉब करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है,
अच्छा
मसलन आप किसी केमिकल फैक्ट्री में अगर काम करें या डाई की फैक्ट्री में या फूड की जहाँ पे खाने पीने क्या चीज़ें बन रही हैं या अद्वियात साजी की फैक्ट्री में काम करें, तो वहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड है, या फिर डिफरेंट किस्म के ये जो पॉलीएस्टर्स होते हैं या प्लास्टिक जहाँ पे बन रही होती है, तो ये मुख्तलिफ इकसाम के केमिकल्स हर एक सनत के लिहाज से वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि ये भी दमा के बायस बन सकते हैं। तो इस तरह से पोल्यूशन जो है, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ जो हैं या फिर जो धुआं जो है, इससे भी मुख्तलिफ जो मरीज़ हैं ये इसकी वजह से दमे का शिकार हो जाते
अच्छा,
हैं।
एक सवाल यहाँ पे हम लोगों के पास आए हैं महमूद अली साहब दुबई से, उन्होंने पूछा है कि क्या मोटापा भी बायस बन सकता है इस बीमारी का?
नहीं, इस तरह से तो इसका जो अवामिल है उसके अंदर मोटापा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है अस्थमा का, लेकिन जाहिर बात है अगर जितनी भी हम बीमारियों का जिक्र करेंगे उनमें जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो ज़रूरी है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो कुछ और बीमारी हो जाएगी जिसकी वजह से अस्थमा भी हो सकता है,
अच्छा
लेकिन ये इसकी कोई डायरेक्ट वजह नहीं है कि अगर कोई ओबेसिटी है किसी को तो उसे अस्थमा हो जाएगा, इस तरह नहीं।
डॉक्टर साहब, भाई किस उम्र से शुरू होता है ये मसला पहली दफ़ा? अलबत्त जैसा कि आपने कहा कि मुख्तलिफ इसके अवामिल होते हैं, लेकिन आम तौर से किस उम्र में देखा जाता है ये?
आम तौर पे ये जो ग्रोइंग एज के साथ ओल्ड जो पीपल होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, आप देखेंगे कि अस्थमा का प्रॉब्लम बच्चों में भी पाया जाता है, ये हर एक एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो सांस की नाली की रुकावट है वो कौन सी, मतलब ये जेनेटिक, क्योंकि एक तो इसकी वजह है कुछ इन्वायरमेंटल है, लेकिन मोस्टली जो ओल्ड या फिर यंग लोग हैं, क्यों ओल्ड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनके अंदर जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर, और मैं यंग लोगों को इसलिए कहूँगी कि वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि उनके वो डिफरेंट उनका एक्सपोजर इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, धुआं होगा वहाँ पे, गर्दोगुबार होगा, इसके अलावा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे मुख्तलिफ केमिकल्स होंगे, तो तो एडल्ट टू ओल्ड में जो अस्थमा का रेट है या रेशियो है वो ज़्यादा पाई जाती
डॉक्टर साहब, आप कोई खुराक है ऐसी जो मदद कर सके बेहतर हो जाए ये कैफियत, या कम से कम ये उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाए?
है। जो इसके सिम्टम्स हैं उनमें कमी के लिए एक तो पहली बात ये कि कोई भी जंक फूड या फिर बाहर से ये जो तली हुई खुराक मिलती है वो नहीं खानी है। जिसको भी खदशा हो या जो भी बचाव करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी जिनको ये बीमारी हो चुकी है वो तली हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएं। इसके अलावा कुछ मरीज़ हैं उनको ड्राई फ्रूट्स या फिर खुश्क मेवाजात जो हैं उनसे वो अगर वो खाएंगे तो उनको वो दमा की कैफियत जो है या उसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स ना खाएं। इसके अलावा चावल जो है वो भी ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स में जो है एज आ एलर्जन काम करते हैं और
अच्छा
वो एस्थमा का जो अटैक है उसको ज़्यादा करते हैं। मतलब एक नॉर्मल एस्थमा का अटैक होता है या दमा का अटैक होता है पेशेंट को, लेकिन अगर वो चावल खाएंगे तो वो उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चावलों को छोड़ देना चाहिए, अपनी ग़िज़ा से निकाल देना चाहिए। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो भी कभी, वैसे तो जो कैफीन होती है वो वेजोडाइलेटर होती है, लेकिन अगर वो आपको पता ही होगा कि कोई भी एक्सेस में या ज़्यादती में चीज़ करेंगे तो
हाँ
वो
बिल्कुल नुकसानदेह
नुकसानदेह
होते
है,
हैं बिल्कुल।
तो वो जो है वो अस्थमा के अटैक को वो भी ज़्यादा कर सकती है। मसलन आप एक दफ़ा कॉफ़ी पी सकते हैं, दो दफ़ा पी सकते हैं, काफ़ी है अगर आप दमा के
दिन में
मरीज़ हैं दिन में।
दिन
और इसके अलावा जो कार्बोनेटेड या कोला ड्रिंक्स हैं वो आपको अपनी ग़िज़ा से बिल्कुल निकाल देने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश सब्जियां खाएं और कार्बोहाइड्रेट्स हर एक चीज़ का जो बैलेंस है वो
बरकरार
इसको
रखें।
बरकरार रखें, तो वो इसके लिए काफ़ी मौसर साबित होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अहम मौजूद मौजू की
आपका
जानब
भी।
आपने इशारा किया, और बहरहाल ऐसा मौजू है कि इस सिलसिले में बहुत गुफ्तगू की जा सकती है। अलबत्त हमारे साथियों ने बताया, एक दो मिनट मेरे ख्याल में हम लोगों के पास मजीद हैं, तो अगर आज के गुफ्तगू का खुलासा करना चाहें, वैसे मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन अगर कुछ और कहना चाहें इस हवाले से।
मैं ये बात ऐड करूं कि जो मरीज़ जिनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऑलरेडी प्रॉब्लम होता है और उनको मसलन उनको एस्थमा पहले भी है और अब उन्हें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो गया है, यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है जिसमें आपके जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर जो ब्रोंकियोल्स या सांस की नालियाँ होती हैं उनके अंदर बैक्टीरिया रिजाइड कर जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसके लिए पहले तो मरीज़ को ख़ुद अपनी जो मर्ज़ है उसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपको आज सांस लेने के अमल के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं या आपके साथ बैठे बंदा उसे महसूस कर सकता है, या फिर आपको जब खांसी का अटैक होता है या अस्थमा का अटैक होता है क्योंकि उसमें कफ भी आती है, तो आपको साथ में बाज़ूकात ये होता है कि वो प्रोलोंग करती है कफ अंदर ब्रेक लेके, मसलन जैसे पेशेंट खांसी करेगा ना उसके बाद थोड़ी गैप आएगा क्योंकि उसे ऑक्सीजन स्टॉप हो जाती है लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर, तो वो उसको थोड़ा गैप आएगा, उसके बाद उसे वॉमिटिंग की भी फीलिंग होगी। तो ये
अच्छा
मरीज को पता होना चाहिए कि उसे दमा का अटैक हुआ है या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन।